ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 18। तो आइए इसको पढ़ते हैं।
यह सत पतन विजी समाड़ो यह सट सपतनान विजगी समाड़ो ग्रहे सुनिर्वेश्ययतेत पूर्वं अत्येति दुर्गा श्रति ऊर्जतारी छीणे सुकामं विचरेद् विपश्चित् यः सत् सपत्नान् विजिगीषमाणो ग्रहे सुनिर्विश्ययतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गा श्रत ऊर्जतारीन् छीणे सुकामं विचरेद् विपश्चित्। यः सट् सपत्नान् विजिगीषमाणो ग्रहे सुनिर्वेश्ययतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारीन् छीणे सुकामं विचरेद् विपश्चित्। यः सत् सपत्नान् विजिगीषमाणो ग्रहे सुनिर्वेश्ययतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गा श्रित ऊर्जतारीन् छीणे सुकामं विचरेद् विपश्चित्। ग्रहे सुनिर्वेश्ययतेत पूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारीन् छीणे सुकामं विचरेद् विपश्चित्। माता यः सत् सपत्नान् विजिगीषमाणो ग्रहेषु निर्विश्यते तपूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्यत् यः षट्पत्नान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्वेश्यते तपूर्वम् अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जतारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्यत् यः जो कोई षट् छह सपत्नान् विपक्षी यानी शत्रु बिजगीषमाणः जीतने की आकांक्षा रखने वाले गृहेषु गृहस्थ जीवन में निर्विश्य प्रवेश करके यथेत प्रयत्न करना चाहिए पूर्वम प्रथम अत्येति जीत लेता है दुर्ग आश्रितः सुरक्षित स्थान यानी दुर्ग दुर्ग में रहते हुए ऊर्जित अरीन अत्यंत प्रबल है शत्रुओं को छीड़ेसो छीण कामम विषय वासना विचरित विचरण कर सकता है विपश्चित अत्यंत अनुभवी विद्वान अनुवाद और तात्पर्य प्रोफाइल द्वारा जगत गोशील उपाध की गृहस्थ आश्रम में रहकर जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है वह उस राजा के समान है जो अपने किले यानी दुर्ग में रहकर अपने बलशाली शत्रुओं को पराजित करता है। गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर तथा काम इच्छाओं को छीण करके मनुष्य बिना किसी भय के कहीं भी घूम सकता है। तात्पर्य चार वर्णों तथा चार आश्रमों की वैदिक प्रणाली अत्यंत वैज्ञानिक है और इसका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थी को जितेंद्रिय उबरने की पूरी शिक्षा दी जाती है। ऐसे वयस्क विद्यार्थी को ही ग्रस्त बनने की अनुमति प्रदान की जाती है और चूंकि इसके पूर्व उसे इंद्रियों को जीतने की शिक्षा दी जा चुकी होती है इसलिए ज्यों ही तरुणा अवस्था की प्रबल तरंगें समाप्त हो जाती हैं और वह 50 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त कर लेता है तो वह ग्रस्त जीवन त्याग कर वानप्रस्थी बन जाता है। इसके पश्चात और आगे शिक्षित होकर वह संन्यास ग्रहण करता है तब वह पूर्ण विद्वान तथा विरक्त पुरुष होता है और भौतिक इच्छाओं से आकृष्ट होने के भय के बिना वह कहीं भी घूम सकता है। इंद्रियों को प्रबल शत्रु माना जाता है। जिस प्रकार से सुदृढ़ दुर्ग में स्थित राजा प्रबल शत्रुओं को जीत सकता है उसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम में रहकर एक ग्रस्त अपनी युवावस्था की विषय वासनाओं को जीत सकता है और वानप्रस्थ तथा संन्यास ग्रहण करने पर अत्यंत निर्भय निशंक रहता है। ओम ज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत्पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजन सहतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौरत्वसे नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यह बृहन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहौ पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदं मुनिमानितोऽस्मि यः स्वानुभावम् अखिलस्मृतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितेषां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुप्यामि गुरुं मुनिना
हरे कृष्ण ये माइक ठीक चल रहा है ना कुछ आवाज़ कुछ वैसी सी लग रही है ना आवाज़ ठीक आ रही नहीं थोड़ा सेट करो बढ़िया इसको माइक को
हरे कृष्ण श्री राधे हरे कृष्ण तो ये श्रीमद्भागवतम पांचवें स्कंध के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय में विषय चल रहा है महाराज प्रिय व्रत का चरित्र। महाराज प्रिय व्रत का चरित्र बड़ा ही विचित्र और पवित्र है। इस अध्याय के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, बोले प्रिय व्रतो भागवत आत्माराम कथम मुने गृहे रमत्यत मूलः कर्म बंध पराभवः। महाराज परीक्षित ने शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी से बहुत बढ़िया जिज्ञासा की, बोले मुनिवर गुरुजी प्रियव्रत तो भगवान के परम भक्त थे और आत्माराम थे, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते थे, उन्हें किसी बाह्य वस्तु की आवश्यकता बिल्कुल थी ही नहीं, कोई आकांक्षा बिल्कुल नहीं थी उनके मन में किसी भी प्रकार की, क्योंकि अपने गुरुवर नारद जी से आत्म साक्षात्कार की बहुत सुंदर शिक्षाएं सीख चुके थे वो। तो आत्माराम आत्मा में ही संतुष्ट रहते थे, परम भक्त थे। ऐसा होने पर भी ग्रहे रमत, ग्रस्त आश्रम में उनकी रुचि कैसे हुई? जो कर्म वंदे तमूल, जो ग्रस्त आश्रम तो कर्म वंदन का मूल कारण है। पराभव, जो व्यक्ति आत्म उन्नति करना चाहते हैं उसे पराभव, उसे परास्त कर देता है ग्रस्त आश्रम में रह करके व्यक्ति, क्योंकि कर्म बंधन में बंध जाता है। तो महाराज प्रियव्रत इतना सब कुछ होने पर भी उसमें क्यों फंसे? और ठीक है, हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक बार लग जाता है, जो उनके चरणों के आश्रित हो जाता है, तो उसके ऊपर कितनी आपत्तियाँ विपत्तियाँ क्यों नहीं आवें, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कीर्तन तो छोड़ ही नहीं पाता। एक बार किसी तरह मन लग जाए, सकृत मना कृष्ण पधार विंदयो, एक बार भी मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाए, तो वह फिर भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन छोड़ ही नहीं पाता। फिर महाराज प्रियव्रत ने ग्रस्त आश्रम में फंस करके भी और परम गति को प्राप्त कर लिया, ये भी हमको पता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन यद्यपि प्रियव्रत आत्म साक्षात्कार में पूर्ण हो चुके थे, यहां तक कि उनके गुरु नारद जी उन्हें ब्रह्म सत्र की दीक्षा ही देने वाले थे, ब्रह्म सत्र मतलब संन्यास देने वाले थे, और बड़ा अच्छा उपदेश भी कर रहे थे। कौन सा पर्वत था वो कि किनारे गंध ऐसा कुछ पर्वत था वहां पर जो उपदेश कर रहे थे वो, पता है किसी को? जो भी है, तो मनु महाराज बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि मनु महाराज ने प्रियव्रत से कहा भी था कि अब तुम इस राजभार को संभालो और ग्रस्त आश्रम में फंस करके राजकाज को देखो और हम वन में जाकर के तपस्या करेंगे। तो यद्यपि पिता की आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं होती है, फिर भी प्रियव्रत महाराज ने अपने आत्मोन्नति में कुछ बाधा समझ करके अपने पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं किया, उल्लंघन कर दिया। और ब्रह्मसत्र यानी संन्यास लेने ही वाले थे, तो मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु आप तो कहते हो सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि करो, सृष्टि करो, सृष्टि की वृद्धि करो, कैसे सृष्टि बढ़ाएं, तुम्हारे ही पुत्र नारद जी ने और प्रियव्रत को सन्यासी बनाए दे रहे हैं, शीघ्र जाकर के आप संभालो, नहीं तो सन्यास एक दीक्षा ले ली सन्यासी बन गए फिर किसी प्रकार घर में वापस आने वाले नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम से तो सन्यास आश्रम में जाते हैं, जाना चाहिए, जाना जा भी सकते हैं और जाना चाहिए, लेकिन ग्रस्त आश्रम में जाकर के फिर पीछे नहीं लौट सकते, सन्यास आश्रम में आकर के फिर पीछे नहीं लौट सकते। यदि मान लो प्रियव्रत सन्यास ले लें तो क्या पीछे लौटेंगे? नहीं लौटेंगे वो, क्योंकि लौटना ही नहीं चाहिए, शास्त्रों में वर्जित है जो एक बार सन्यास आश्रम में पहुंच जाए, जो भौतिक वस्तुओं का प्रत्याग कर दे, फिर उनको उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा है वो तो बमन करके उसको खाने के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से अपने सेवकों के साथ में आए और महाराज प्रियव्रत ने, नारद जी ने उनको प्रणाम किया, और ब्रह्मा जी प्रियव्रत की ओर देख करके कुछ मुस्कराते हुए बोले राजकुमार जानते हो भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है, भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता, और भगवान सर्वशक्तिमान हैं। जो जिसको आदेश दें उस आदेश को उसे मानना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान सबके नियंता हैं। ये ब्रह्मा जी ने वहाँ भी कहा है, जब ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े दुर्वासा मुनि पहुँचे थे चक्र से राहत पाने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने दुर्वासा मुनि से कहा था, दुर्वासा जी जानते हो ये चक्र किसका है? जो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि हैं उनका ये चक्र है, और हम सब उनके नियंत्रण में रहते हैं। बोले अहम भवो दक्ष भ्रभु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम यत नियमम प्रपन्ना मूर्धनार्पितम यत लोक मूर्धनार्पितम लोकहितम बहामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले मैं भगवान शिव इंद्र प्रजेश यानी सभी प्रजापति और सभी देव जितने भी हैं सब भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में रहते हैं। सर्वे वयम यत नियमम प्रपन्ना, हम सभी उनके नियंत्रण में रहते हैं। बिना उनकी इच्छा के तो कुछ भी नहीं कर सकते, बिना उनकी इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ब्रह्मा जी बोले प्रियव्रते जानते हो भगवान की क्या इच्छा है? अरे भगवान की इच्छा करना ही तो मानव जीवन की सफलता है। भगवान ने कहा भी मन मना भव, मेरे मन वाले बनो, अपनी मनमानी मत करो, मेरे मन वाले बनो, मैं क्या चाहता हूं वो करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान की ही आदेश उनकी आज्ञा से यहां पर आया हूं आपको समझाने के लिए, ये भगवान का ही आदेश है मेरे माध्यम से। ब्रह्मा जी बोले तो अभी आप ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करो और भगवान के दिए हुए भोगों को ठीक से भोगो, और उसके बाद फिर निश्चित रूप से आप वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में जा सकते हो, जाना भी चाहिए। जानते हो अभी आप वन में जाना चाह रहे हो, तो जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना ही रहता है। जो इंद्रियों के वशीभूत है तो वन में कहीं भी विचरण करता रहे उसे भय बना रहता है, क्योंकि छह शत्रु हैं मन और पांच इंद्रियां, वो तो उसके साथ में ही जाते। जैसे कल सार्वभौम प्रभु बड़े बढ़िया ढंग से बता रहे थे कि घर में एक पत्नी को छोड़ा और वन में गए छह पत्नी साथ में गई, है ना, तो फिर राहत कहां मिली? तो ये वन में जाकर के भी यदि इसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वो इंद्रियों के वशीभूत है, तो वहां भी उसे भय बना रहता है। तो यहां इस श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह सट सपत्नान बिजगीष माणो, यह मतलब जो पुरुष सट जो छह सपत्नान जो छह इंद्रियां शत्रु हैं, यह सट सपत्नान जो व्यक्ति इन छह शत्रुओं को बिजगीष माणो इनको जीतने की यदि इच्छा रखता है, जो पुरुष इन छह शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखता है तो पूर्वम ग्रहेषु निर्वस्यति, उसे पहले ग्रहेषु निर्वेश ग्रह में यानी ग्रस्त आश्रम में रह करके ही यतेत यानी प्रयत्न करना चाहिए, यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, इन इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। कितना बढ़िया यानी कितना बढ़िया उन्होंने बताया कि पूर्वम यानी पहले, पूर्वम क्यों आया है? इसलिए आया है कि इसका मतलब ग्रस्त आश्रम में ही नहीं रहना चाहिए। वो कह रहे हैं पूर्वम पहले ग्रस्त आश्रम में रह करके इंद्रियों को ठीक से वशीभूत करें, फिर बाद में वानप्रस्थ में जाएं और संन्यास में जाएं, इसलिए पूर्वम पूर्वम गृहेषु निर्विश्य, पहले घर में गृहस्थ आश्रम में रह करके ही और यथेत प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने का। जिस प्रकार अत्येति दुर्गाश्रत ऊर्ज तारीन, जिस प्रकार एक राजा पर अपने शत्रुओं को किले के अंदर सुरक्षित रह करके बड़ी आसानी से बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को भी जीत लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम एक दुर्ग है, दुर्ग किले के समान है। और ये शत्रु बहुत बलवान है, एक मन और छह इंद्रियां, ये पांच इंद्रियां, ये बहुत बलवान है, ये बहुत बड़े शत्रु हैं। अच्छा, ये शत्रु क्यों हैं? ये शत्रु इसलिए हैं कि सबसे बड़ा जो महाशत्रु है हमारा, उसके निवास स्थान है ये। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बोले कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। ये सबसे बड़ा शत्रु है काम, और ये कैसे उत्पन्न होता है? बोले रजोगुण भव, ये रजोगुण, रजोगुण से ही उत्पन्न होता है काम और क्रोध। रजोगुण कहाँ रहता है? अधिकतर गृहस्थ आश्रम में अधिकतर रजोगुण रहता है। तो रजोगुण में रहेंगे तो रजोगुण समुद्भव, ये काम ये जो सबसे बड़ा शत्रु है, ये रजोगुण से ही उसका उद्भव उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि व्यक्ति को, जो पुरुष, जो व्यक्ति इन छह शत्रुओं को वश में करना चाहता है तो पूर्वम गृहेषु निर्विश्यतेत, उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रह करके यत्न प्रयास करना चाहिए। और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में रह करके इन छह शत्रुओं को दमन कर लेगा, फिर वह कहीं भी विचरण कर सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि यतेत, यतेत मतलब जो यत्न करना चाहिए, यतेत मतलब यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो भगवान गीता में कहते हैं कि यततो हि अपकौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। भगवान कहते हैं कौन्तेय, ये इंद्रियां इतनी प्रबल और इतनी वेगवान, इतनी बलवान हैं कि यततो, जो व्यक्ति इनको वश में करने का यत्न करता है, प्रयास करता है, ऐसे विवेकशील, विवेकशील पुरुष का, जो इनको वश में करने का प्रयास करता है, ऐसे विवेकशील पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं इंद्रियां। यततो हि अपकौन्तेय इंद्रियाणि प्रमाथीनि, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल बलवान हैं, बहुत बलवान है। चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, जो दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण दारुवी प्रकृति हरे मुनिर पिमन। यानी चेतन चरितामृत वर्णन आया है कि दुर्वार इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं बड़ी बलवान इंद्रियां, ये हमेशा अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो इनकी विषय हैं, ये प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय की ओर दौड़ती रहती है। दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, दारुवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन। दारुवी कहते हैं लकड़ी, प्रकृति मतलब स्त्री, चेतन महाप्रभु ने स्त्री को प्रकृति कहा है, स्त्री न कहकर के प्रकृति कहा है। दारुवी प्रकृति हरे मुनिरपि मन, कहते हैं कि बड़े बड़े मुनियों के मन को भी, जो लकड़ी की मूर्ति होती है, लकड़ी की मूर्ति भी बड़े बड़े मुनियों के मन को हर लेती है, क्यों? क्योंकि दुर्वार इंद्रिय करे विषय ग्रहण, ये बलवान इंद्रियाएं अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, बहुत बलवान है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति, ये इंद्रियों का जो समूह है इतना बलवान है, इतना बलवान है कि विद्वान अपि कर्षति, बड़े बड़े विद्वान को भी आकर्षित कर लेती हैं, इतनी बलवान ये इंद्रियां हैं। तो ये छह इंद्रियां, एक मन और पांच इंद्रियां, ये छह इंद्रियां इतनी बड़ी शत्रु हैं। अरे छह की तो बात छोड़ो, एक इंद्री भी, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते एक इंद्री भी इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनो अनुविधीयते तदस्थरती प्रज्ञा वायुर नावम इबाम्बसी। अरे छह इंद्रियों की बात करते हो, भगवान कहते हैं कि अर्जुन पार्थ जानते हो जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है ना, नदी में नाव जा रही है और बहुत तेज का तूफान आंधी आ गई तो जिस स्थान पर नाव को पहुंचना है उस स्थान से बहुत दूर हवा बहा ले जाएगी, उस नाव को बहुत दूर ले जाएगी, बहुत दूर ले जाएगी। नावम इमाम भसी, जिस प्रकार नाव पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियाणाम इतरताम इन इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय की ओर उसका मन लग जाए, एक इंद्रिय भी, तो वह बुद्धि का नाश कर देती है, वो पतन कर देती है। और छह इंद्रियां तो बहुत दूर की बात, एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय की ओर लग जाए, जिस इंद्रिय में मन लग जाए तो वो जीव का पतन कर देती है, एक इंद्रिय। और यहां तो छह छह इंद्रियां शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं को जीतने के लिए, इन प्रबल शत्रुओं को जीतने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रियव्रत से कि ग्रहेशु निर्वेश्यते पूर्वम, पहले इन्हें ग्रस्त आश्रम में रह करके और इन इंद्रियों का दमन करो, का प्रयास करो। क्योंकि ये ग्रस्त आश्रम एक दुर्ग है, किला के समान है, इसमें हम इन शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु है काम, और इस काम को हम ग्रस्त आश्रम में रहकर किसे हम परास्त कर सकते हैं, सबसे बड़ा शत्रु है ये काम। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ग्रस्त आश्रम में रह करके और इनका दमन करो। तो देखिए ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि ग्रस्त आश्रम में जाओ और फिर इन इंद्रियों का दमन करो। उसी तरह आपने पीछे चौथे स्कंद में सुना होगा प्रचेताओं की कथा, जब प्रचेता समुद्र के अंदर तपस्या कर रहे थे, भगवान श्री हरि की आराधना कर रहे थे, तो उसमें भगवान उनको वरदान देने के लिए आए, उन्हें वरदान दे ही दिया कि प्रचेता हो तुमने बड़ी भारी तपस्या करी है और देखो तुम्हारे पिताजी ने इसलिए भेजा है कि सृष्टि की वृद्धि करनी है, तो जाओ ये यहाँ पर एक कन्या है मरिषा नाम की कन्या, जो प्रमलोचा नाम की अप्सरा थी, कंडूरसी की तपस्या को भंग करके एक पुत्री उत्पन्न की उसने, और उस पुत्री का पालन पोषण वृक्षों ने किया है और अब वो सर्वथा विवाह के योग्य है, शादी के योग्य है, तो आप दसों भाई उसके साथ विवाह कर लो। प्रचेता बोले प्रभु विवाह करके गृहस्थ आश्रम में फंस के फिर तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, एक बार जो इसमें फंस गया कहां से, नहीं निकल पाता। भगवान की इस पर विशेष 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 ही कृपा होती है, वही निकल पाता, नहीं तो नहीं निकल पाते। प्रयास करते रहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा अवसर ऐसा समय कब आए जो हम ग्रहम अंधकूपम इस अंधे कुएं से कैसे कब निकले, ऐसा अवसर का अभाव है। खूब भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, कभी घर में बच्चों की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती, या फिर घर में किसी चीज़ का अभाव रहता है, या फिर परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो नहीं छोड़ सकते, तो भगवान की इस पर विशेष विशेष कृपा होती है, वही ग्रस्त आश्रम में फंस के फिर निकल पाता है। तो प्रचेता बोले, प्रभु ग्रस्त आश्रम में क्यों फंसा रहे हो, इसमें फंस कर के निकलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान बोले, प्रचेता हो, ऐसी बात नहीं है, गृहेशु वस्ताम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम मदवार्ता या तो यामानाम न बंधा ग्रह मतः। भगवान बोले प्रचिताओं से, प्रचिताओं तुम विवाह कर लो, शादी करो, ऐसी बात नहीं कि घर में रहकर के गृहस्थी बंधन का कारण हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थी बंधन का ही कारण हो। ग्रहे स्वस्थाम चापी पुंसाम कुशल कर्मणाम, जो व्यक्ति अपने कार्य में कुशल है, दक्ष है, बुद्धिमान है, तो वो व्यक्ति ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले मद वार्ता या तयामानाम, वो व्यक्ति, वो कुशल व्यक्ति हमेशा आठवयाम यानी 24 घंटे कृष्ण भावना भावित रहता है। मद वार्ता या तयामानाम, वो मेरी वार्ताओं, मेरी कथाओं में, श्रवण कीर्तन में हमेशा उसमें ही रहता है, तो उसे बंधन का कारण फिर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जब वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है तो नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हो, मद वार्तायाम, मेरी वार्ताओं को सुनते हैं, मेरी कथाओं को सुनते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो ग्रस्त आश्रम भी उनको बंधन का कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो मेरी कथाओं को सुनते रहते हैं और मेरी कथाओं को सुनने से उन्हें हमेशा हर पल पल क्षण क्षण में उन्हें नई अनुभूति मेरी होती रहती है उन्हें, है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं और उनकी कथाएं भी दिव्य हैं। भगवान की कथाएं नित्य प्रति रोज सुनो तो कथाएं रोज आपको दिव्य लगेंगी, नई लगेंगी, और भगवान भी नए लगेंगे, वो कभी पुराने आपको लगेंगे नहीं। आप रोज राधा श्याम सुंदर के, कृष्ण बलराम के, गौरनता के दर्शन करते हो, वो आप ये सोचते हैं अरे कल दर्शन किए थे, अब क्या बार बार करने हैं, कभी सोचते हैं? जब दर्शन करोगे तब उनको नया ही भाव आएगा, वो नए ही लगेंगे वो, क्योंकि दिव्य हैं, साधारण नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मद वार्ता यानी आठों समय मेरी वार्ता में, कथा वार्ता में रहता है, तो वो व्यक्ति हमेशा मुझे नया नया अनुभव करता है, उसके लिए हमेशा नया नया ही लगता हूँ मैं। और ब्रह्मा जी ने कहा भी है, जब ब्रह्मा जी बछड़े चुरा ले गए थे तो उस समय भगवान की परीक्षा लेना चाही उन्होंने, तो भगवान की परीक्षा लेना चाही, बछड़े चुरा ले गए तो ब्रह्मा जी असफल हो गए, सफलता नहीं मिली। आकर के फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बड़ी सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी ने, 40 श्लोकों में स्तुति की है, ब्रह्मा की स्तुति बहुत बड़ी स्तुति है 40 श्लोकों। तो उसमें ये तीसरा श्लोक है, ब्रह्मा की स्तुति का तीसरा श्लोक, बोले ज्ञाने प्रियासम उदपास्य नमन्तेव जीवंत सन्मुखरताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवात्मनो भी ये प्रायसो जितो अपि अस्ति तैत्र लोक्यम। ब्रह्मा जी कहते ज्ञाने प्रियासम उत्पास्य नमन्तेव, कहते हैं प्रभो जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके, ज्ञाने प्रियासम उत्पास्य, जो व्यक्ति ज्ञान के उद्यम को, प्रयास को छोड़ करके और केवल सत्संग करता है, भवदीय वार्ताम सन्मुखरताम, सन जो सत्पुरुषों के मुख से भवदीय वार्ताम आपकी कथाओं का श्रवण करता है, जो व्यक्ति यानी ज्ञान का प्रयास न करके केवल सत्संग करता है और अपने स्थान पर रहते हुए भी, चाहे वो बॉम्बे में रहे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे पूना में रहे, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवाक मनो भी, वो जिस स्थान पर रहे या जिस आश्रम में, ये भी एक स्थान है, ब्रह्मचर्य आश्रम है कि वानप्रस्थ आश्रम का स्थान है कि संन्यास का स्थान है, स्थाने स्थिता किसी भी स्थान पर रहे, और जो भवदीय वार्ताम सन्मुखरता, जो शुद्ध भक्त हैं उन शुद्ध भक्तों के हृदय से, हृदय मुखोच्चताम, जो उनके हृदय से जो कथा निकलती है वो अमृत जो टपकता है, और उस भवदीय वार्ताम उस कथा का श्रवण करते हैं तनवाक मनो भी। कैसे? बोले वाणी से और मन से और शरीर से विनयावनत होकर के कथा का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने तन्वाक मनोभी की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। सनातन गोस्वामी ने कहते हैं तन्वाक मनोभी मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा मनसा वाचा कर्मणा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, भगवान सेवा मनसा वाचा करना, मन से वाणी से कर्म से। मन से कैसी सेवा है भगवान की? बोले मन से भगवान के चरणों का चिंतन करें, या भगवान की कथा जैसे आपने जो भागवत में पढ़ा है या भागवत में सुना है मन से उसका चिंतन करें, भगवान की कथा का चिंतन करें और भगवान के चरणों का चिंतन करें। मनसा वाचा और वाणी से क्या सेवा करें? वाणी गुणानु कथने, वाणी से भगवान का गुणगान गाएं, भगवान का कीर्तन करें, और शरीर से भगवान की सेवा करें। यानी घर में ठाकुर जी को रखते हैं, सब लोग रखते ही हैं, भगवान की स्वयं हाथों से सेवा करें, उनको स्नान कराएं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराएं, फिर आभूषण धारण कराएं, फिर उनको फूलों से सजाएं, और फिर भगवान की आरती करें, और फिर उनका सुंदर सुंदर रूप को देख करके ध्यान करें कि आज हमारे प्रभु, आज हमारे ठाकुर कैसे लग रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, भगवान की सेवा मन से वाणी से कर्म से, अर्थात भगवान की कथा भी, कथा के लिए भी जो मन से वाणी से कर्म से उसका आदर करते हैं और नित प्रति भगवान की कथा को सुनते हैं, अरे सुनते क्या हैं, वो भगवान की कथा का श्रवण किए रह ही नहीं सकते, कथा ही उनका श्रवण करना जीवन है, उनका जीवन ही कथा श्रवण करना है। तो बोले ऐसे व्यक्ति, ये प्रायसो जितो अपि, ऐसे व्यक्ति जो अजित हैं, भगवान श्री कृष्ण अजित हैं, तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता, त्रैलोक्यम, तीनों लोकों में जिन भगवान को कोई जीत नहीं सकता, तो ऐसे अजित भगवान को भी वो भक्त जीत लेते हैं। कौन जीत लेते हैं? तो निरंतर अपने स्थान पर रहते हुए ही सत्संग करते हैं, भगवान की कथाओं को, लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो वो व्यक्ति ही बड़ी आसानी से भगवान को जीत लेते हैं। यह है इंद्रियों को वश में करने का तरीका, क्योंकि इंद्रियाएं बहुत बलवान हैं, जो बड़े बड़े विवेकी पुरुष इनको वश में करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर भी ये बलवान इंद्रिय ऐसे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो इनको वश में करने का क्या तरीका है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ग्रहेषु निर्वस यतेत पूर्वम, पहले घर में ही रह करके इन इंद्रियों का दमन करने का प्रयास करें। जैसे मैं अभी आपको प्रचेताओं का उदाहरण दे रहा था कि जब प्रचेता भगवान शिव से भी ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने प्रचेताओं ने भगवान हरि से भी उपदेश ज्ञान प्राप्त किया, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद ग्रस्त आश्रम में आ गए, वो ग्रस्त आश्रम में रह करके दस लाख वर्षों तक उन्होंने ग्रस्त आश्रम में रहे, क्योंकि पहले बहुत लंबी आयु हुआ करती थी, 10 लाख वर्षों तक ग्रस्त आश्रम में रहे, पर ग्रस्त आश्रम में रहते रहते फिर उनको विवेक हुआ, देखिए यदि भगवान कह चुके हैं, यद्यपि भगवान उसे कह चुके हैं कि घर में रहने पर भी उस बुद्धिमान व्यक्ति को बंधन नहीं बनता है जो हमेशा मदवार्ता या तयामानाम हमेशा मेरी कथा लीला वार्ताओं में रहता है तो बंधन का कारण नहीं बनता। लेकिन फिर भी प्रचेताओं को ऐसा विवेक हुआ, ऐसी मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अरे अरे भाई ग्रस्त आश्रम में हम कब तक फंसे रहेंगे, इससे वो निकलना चाहिए। तो प्रचेता दसों के दसों अपनी पत्नी का भार अपने पुत्र को, क्यों उनका एक ही पुत्र था, एक पुत्र था लेकिन बड़ा कर्मठ पुत्र था, कौन थे वो, प्रजापति, वो दक्ष प्रजापति जो प्राचेतस दक्ष कहलाए, ये वही दक्ष जो पहले ब्रह्मा जी के पुत्र थे, भगवान शिव का अपराध करने के कारण को बकरा का मोह मिल गया था इसलिए फिर वो शरीर त्याग दिया, तो ये प्रचेताओं के उन्होंने जन्म लिया तो ये प्राचेतस दक्ष कहलाए। तो प्रचेताओं ने अपनी पत्नी का भार अपने पुत्र को सौंप दिया, पुत्र अब तुम अपनी माँ की देख रेख तुम करो और हम अब वन में जाके भगवान का भजन करेंगे। और ऐसा होता है क्योंकि वानप्रस्थ भी दो प्रकार का होता है, एक तो यदि घर में पुत्र अपनी यानी अपनी माँ का ठीक से भरण पोषण कर सकता है और माँ की जिम्मेवारी ले सकता है तो पति निश्चिंत हो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती। यदि घर में ऐसी व्यवस्था है नहीं, पुत्र पत्नी को देखने वाला है नहीं और पत्नी का कोई ठीक कोई आश्रय है नहीं तो पति का कर्तव्य है पत्नी को निसहाय नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों उसे न कोई तो आश्रय चाहिए, संरक्षण चाहिए, वो किसी न किसी के संरक्षण में रहना जरूरी है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुत्र का भी कर्तव्य बनता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब पिता जब वन में चला जाए तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि अपनी माँ की ऐसी सेवा करे कि उसको अपने पति का विछोह उसे सताए नहीं, ये पति का पुत्र का कर्तव्य है। तो प्रचेता अपनी पत्नी का भार अपने पुत्र को सौंप करके वन में चले गए। अब वन में जाकर के अब वो बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसी कौन सी साधना करें जिससे हमारा परम कल्याण हो, तो उन्हें नारद जी मिल गए और कहा स्वागतम सर्वसिद्ध, हे मुनिवर आपका स्वागत है, आप अच्छे समय पर आए, देखो आप संतों का घूमना फिरना ऐसा ही रहता है जैसे सूर्य चक्कर लगाते हैं ना सब अंधकार को दूर करते हैं, ऐसे ही महापुरुष आप जैसे संत ऐसे घूम चक्कर लगाते रहते हैं घूमते रहते हैं जो लोगों को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालते हैं। प्रभु हम भी बड़े अज्ञानता में आ गए क्योंकि यद्यपि हमने भगवान शिव से खूब ज्ञान को प्राप्त किया, भगवान श्री हरि से विष्णु से भी खूब हमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन ग्रस्त आश्रम में रह करके हमारा ज्ञान विलुप्त तो हो गया। ये प्रचेता कह रहे हैं आप पढ़ना उसमें, बोले ग्रस्त आश्रम में रहकर के हमारा ज्ञान विलुप्त तो हो गया, क्यों ग्रस्त आश्रम ही ऐसा है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो और हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे हमारा परम कल्याण हो और इस संसार सागर को हम पार कर सकें। यह है बुद्धिमानी। किसी भी संत से या गुरुजी से क्या जिज्ञासा रखनी चाहिए कि जो ये जो दुर्जय संसार सागर है इस संसार सागर को कैसे पार करें, कौन सा उपाय करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए जो भी करना पड़े वो हम कर सकते हैं, पर ऐसा कोई उपाय बताओ जो संसार सागर से हम पार हो जाएं। ये प्रचेताओं ने कहा है नारद जी से। तो नारद जी बोले प्रचेताओं खेद मत करो, आप ये मन सोचो कि हम इतने समय तक ग्रस्त आश्रम में रहे हमारा जीवन यूं ही निकल गया, जानते हो तद जन्म तद कर्माणि तद आयु तद मनोवचः नृणाम एने विश्वात्मा सेव्यते हरीश्वरः। भगवान नारद जी बोले देखो प्रचेताओं चिंता मत करो, वही जन्म श्रेष्ठ है जिस जन्म में भगवान की भक्ति की जाए, वही कर्म श्रेष्ठ है जिस कर्म से संसिद्धि हरितोषणम भगवान की प्रसन्नता हो, और वही आयु श्रेष्ठ है जिस आयु से हम सेव्यते हरीश्वरः भगवान की सेवा करें, और वही मन श्रेष्ठ है जिस मन से हम भगवान का चिंतन करें। तो आप चिंता मत करो भगवान का भजन करो। बोले किनका भजन करें, बोले श्री कृष्ण की उपासना करो, यथा तरोन्मूल निश्चित नैना तृप्यंत तदस्कंद भुजोपशाखा अरे जो सबके मूल हैं श्री कृष्ण, उनकी आराधना करो, परम कल्याण होगा। तो इस प्रकार नारद जी ने उनको उपदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, ग्रस्त आश्रम में रहकर के इंद्रियों का दमन करो, और इंद्रियों का जब दमन हो जाए फिर आप स्वच्छंद फिर वानप्रस्थ में जा सकते हो, और फिर संन्यास ले सकते हो। संन्यास लेके फिर आपको फिर कोई भय इंद्रियों से नहीं रहेगा, क्योंकि आपने खूब प्रयास किया है, ग्रस्त आश्रम में रहकर इनका दमन किया है। तो आज के श्लोक में ये शिक्षा मिलती है कि हमें ग्रस्त आश्रम में है तो ग्रस्त आश्रम में रहते हुए उन्हें इंद्रियों का दमन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और बार बार प्रयास करना चाहिए। असफल हो जाए फिर भी निराश न होकर के फिर प्रयास करते रहें। जब प्रयास करते रहेंगे सफलता मिलेगी, और फिर वो आगे फिर वानप्रस्थ में जाएँ, फिर संन्यास आश्रम ग्रहण करें, फिर वो पूरे पृथ्वी पर विचरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यहीं हम वाणी को विराम देते हैं, समय हो गया। कोई किसी का प्रश्न है? ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।